Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टो तत्सत श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिदान स्वामी शील प्रभात की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टो तत्सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभात की अनंत कोट वैष्णववृंद की नामाचार हरिदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गुरु गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की समवेत भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डोटी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री एन गुरु गौरंगा शिला प्रभात की जय हरे कृष्णा। तो हम आज के इस सत्र में भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 पे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग श्लोक को दोहराइएगा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम् च युक्त समासता मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपदत्तते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् च उक्तम् समासता मद्भक्ता एतत् सविज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् च उक्तम् समासता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपबद्धते। दुराई इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम् चोक्तम समासता मद्वक्ता मेतद्विज्ञाय इति चेत्तम तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् चोक्तम समासता मद्भक्ता तज्ञाया मद्भावाय उपपद्यते। शब्द अर्थ इति इस प्रकार, क्षेत्रम कर्म का क्षेत्र शरीर, तथा भी ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम जानने योग, चा भी उक्तम कहा गया। समासता संक्षेप में मत भक्ता मेरा भक्त, एतत् यह सब, विज्ञाय जानकर, मत भावाय मेरे स्वभाव को उपपद्यते प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण भक्त प्रदान स्वामी शीला प्रभुवाद के द्वारा। शीला प्रभुवाद की जय। अनुवाद इस प्रकार, मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनंत भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है, अन्य से समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर तथा शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक का कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदि सर्वस्य विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन 3 बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्तवान हनुमान की। ओम अज्ञान्ति मृन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुन्नवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो हम देखते हैं जैसे कि भगवद गीता के जो मुख्य सब्जेक्ट मैटर हैं तो वो 5 चीज़ हैं, भगवान, जीवा, प्रकृति, काल और कर्म। तो उनमें से पुरुष अर्थात भगवान स्वयं, प्रकृति और चेतना मतलब जीवा, इसके बारे में इस अध्याय में है। इसके पहले का अध्याय था भक्ति योग और उसके बाद अर्जुन ने का प्रश्न था तो उसका ही उत्तर दे रहे हैं भगवान कि अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रक तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान इस श्लोक में ज्ञान एवं ज्ञेय और उसके ज्ञाता के बारे में बता रहे हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 से सातक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण है। भौतिक तत्वों का मतलब कि जो कि शरीर के विभिन्न तत्व हैं या भौतिक संसार में जो तत्व हैं, जैसे कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, दस इंद्रियां और इंद्रिय विषय, द्वेष, सुख, दुख, इस तरह के, इसके साथ ही आठवीं से बारह तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं, दोनों प्रकार के ज्ञाता, एक तो भगवान कार्य क्षेत्र ये शरीर के बारे में, एक तो भगवान जानते हैं और एक आत्मा स्वयं। तो इसके बारे में भगवान विस्तार से बताते हैं कि ज्ञान क्या है, शरीर क्या है और इसको जानने वाला जो ज्ञाता है वो कौन है। तो ज्ञान, पहले से भगवान बोलते हैं ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, हम देखते हैं आजकल या हमेशा से लोग, दार्शनिक जो विद्वान लोग होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल में जाते थे, बचपन से ही जाते थे। तो असली ज्ञान क्या है और भौतिक ज्ञान क्या है, तो जो कि भगवान यहाँ पे बताते हैं, ज्ञान वह है जो कि पदार्थ, आत्मा और इन दोनों के कंट्रोलर को जानता है, उसको ज्ञान कहते हैं। बाकी इसको ज्ञान नहीं कहते हैं कि हम कोई चीज अच्छे से कैसे कर सकते हैं ना, कैसे, जो कि जानवरों में भी पाई जाती हैं, उनको सीखने के लिए कि हम अच्छे से कैसे सो सकते हैं, अपनी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, खाना कैसे अच्छे से कर सकते हैं। आज की जो प्रगति है तो इन्हीं चीज़ों पे है, लेकिन असली ज्ञान है कि तत्व जिज्ञासा करना, परम सत्य की खोज करना। तो ये ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिर्फ शरीर के लिए है ना, खाना, सोना, रक्षा करना, ये शरीर के लिए है ज्ञान है, और आत्मा के लिए है तत्व ज्ञान की जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना और भौतिक संसार के कंट्रोलर के बारे में जानना। तो हम देखते हैं जैसे कि शरीर महत्वपूर्ण है कि आत्मा ना, क्यों, आत्मा शाश्वत है जबकि शरीर अशाश्वत है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होता है। शरीर है या भौतिक पदार्थ है वो अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है, और जबकि आत्मा में चेतन है। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो लोग बोलते हैं कि वो चला गया, कौन चला गया, आत्मा चला गया, तो फिर वो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना, उसको जला देते हैं या जमीन पे दफना देते हैं, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण जो था उसमें आत्मा वो चला गया। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि शरीर का। नहीं तो आज हम जो अध्ययन करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वो क्या करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्म लेते हैं, उस समय कैसे रहें, स्कूल कॉलेज में कैसे जाएं, जॉब कैसे करें, तो इसी तरह के ज्ञान में पूरा बिजनेस कैसे करें, पैसा कैसे कमाएं, इसी में पूरा जीवन वो करते हैं, और कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए लैमेंट होते रहते हैं ना, लैमेंटेशन करते हैं, जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। और परमात्मा जो कि स्वयं भगवान है, उसके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण है, कि भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में ना, कि जो मुझको जान लिया, भगवान कृष्ण को जान लिया, तो वो सारे वेद शास्त्र और सारा नॉलेज जान लिया, यहाँ तक भौतिक भी, क्योंकि सभी ज्ञान जो है भगवान से ही आया है, और भगवान को जान लिया तो सभी को जान लेते हैं। क्योंकि बाकी छोटा छोटा है, जैसे नित्यो नित्या नाम चेतनो चेतना नाम, वो सुप्रीम चेतना है या सुप्रीम जो हमेशा से इटर्नल है, और बाकी छोटे छोटे हैं। तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। और गे कि अलग अलग विधियां हैं ज्ञान प्राप्त करने की, कि हम देखते हैं कि कोई ज्ञान होता है कि दो विधियां होती हैं, एक अवरोह एक आरोह। जो एक है कि जो कि गुरु परंपरा से आता है, और दूसरा है कि हम इस अपने मन से बुद्धि से ज्ञान को कुछ प्रैक्टिस कर करके निकालते हैं, उसको छोटा नॉलेज करते हैं। और वो जो नॉलेज होता है जो हम अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा निकालते हैं, तो उसमें कमियां होती हैं ना, कि हमारे में अंदर चार कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आज प्रभाजी बताते हैं कि ये असली विज्ञान है, क्योंकि हम जो भौतिक विज्ञान में जो भी अध्ययन करते हैं तो वो ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है, हमारी इंद्रियों के द्वारा। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो अपनी इंद्रियों के द्वारा बनाते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है टेलीस्कोप है, तो ये हम स्वयं बनाते हैं। और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, कि जैसे हम कुछ दूर तक देख सकते हैं ना, इस मंदिर के बाहर अभी यहाँ बैठे हुए नहीं देख सकते। इस तरह सुनने की हमारी क्षमता कुछ है कि कुछ दूरी तक चीज़ें हमें सुनाई दे सकती हैं। तो जो हम नॉलेज ज्ञान कर प्राप्त करते हैं भौतिक इंस्ट्रूमेंट से उपकरणों से, तो उसमें लिमिटेशन होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जितना ऑब्जर्व कर पाती हैं अध्ययन कर पाती हैं उतना ही हम उसको समझ सकते हैं। और इस कारण क्योंकि अब इंद्रियां अपूर्ण है तो ज्ञान भी अपूर्ण रहता है, तो इसलिए हम धोखे में रहते हैं, वो सत्य नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन हमको लगता है कि वो सत्य है। और जब हम धोखे में रहते हैं तो फिर गलती करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, परफेक्ट इंद्रियां नहीं है, तो वो गलती करेंगे और इस तरह से दूसरे को धोखा देंगे। तो देख सकते हैं कि भौतिक ज्ञान है वो अपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं, जबकि जो अवरोह विधि है ज्ञान प्राप्त करने की वो गुरु परंपरा से आती है, कि जो भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया, जैसे भगवत गीता है भगवान ने स्वयं दिया, और वो एक परंपरा से हम तक पहुंच पा रही है। लोग बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, बहुत अध्ययन करते हैं तो उनका परफेक्शन हो सकता है, लेकिन हम कितने सारे देखते हैं कि भौतिक ज्ञान अर्जित करते हैं अपने मन के द्वारा विचार करते हैं, और वो विचार प्रकट करते हैं और उन पे रिसर्च होता है डिस्कशन होता है, लेकिन उनको हम बुद्धिमान नहीं कह सकते। सिर्फ बुद्धिमान इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जैसे कि शरीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उसकी फुलफिलमेंट करें, जैसे हमने देखा कि वो खाना सोना अपनी सुरक्षा करना, ये सब करने कर लेते हैं तो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान का असली परिभाषा है कि सही गलत में भेद कर पाना, क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक है। हम आज देखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक ना दार्शनिक अपने को या बहुत मशीनें चलाते हैं ना, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं बड़े बड़े, लेकिन तब भी वो सिगरेट शराब ये सब यूज करते हैं, जबकि उनको पता है कि ये हानिकारक हैं। तो अगर वो बुद्धिमान होते ना, इतने डिग्रियां प्राप्त कर ली है लेकिन बुद्धिमान होते तो उनको पता रहता कि ये हानिकारक है, तो उससे दूर रह पाते, क्राइम नहीं करते, गलत काम नहीं करते। लेकिन इतना सब कुछ है, वो इंजीनियर हैं वैज्ञानिक हैं, लेकिन इस पे होने वाले नुकसान को वो नहीं देख पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। केवल भक्ति समझ सकते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है, वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त होंगे वो जो भगवान बोलेंगे उसको फॉलो कर पाएंगे और उसको समझ करके अपना जीवन सही कर पाएंगे, जबकि अभक्त लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ना, और वो कैसे क्यों नहीं समझ पाएंगे। तो हम भागवतम में देखते हैं कि कुंती महारानी प्रेयर करती हैं ना, कि जैसे भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं, दिव्य क्यों कही जाती हैं भगवान की लीलाएं, जो भी भगवान एक्टिविटी करते हैं उनको लीला बोलते हैं और उनको दिव्य बोलते हैं। क्यों? हाँ, भौतिक गुणों से परे है और ये दिव्य ऐसे हैं कि कुंती महारानी प्रेम में बोलती हैं कि उनकी जो लीलाएं हैं उनमें क्या गुण हैं, एक तो वो चकराने वाली हैं कि लोग देखते हैं कि एक बालक है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को बचपन में ही मार देते हैं, उनको अजन्मा बोला गया है ना, अजन्मा है वो, भौतिक संसार में जीवों की तरह जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन तब भी वो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं ना, वराह, नरसिंह, राम, मत्स्य, ये देखते हैं अनेक रूप हैं उनके, तब भी बोलते हैं कि वो निराकार हैं, वो अजन्मा हैं। क्यों? क्योंकि उनके भौतिक रूप नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप है, दिव्य रूप है, वो हमारे जैसे शरीर से नहीं बना है ना, हड्डी मांस खून इनसे नहीं बना है भगवान, इसीलिए इसमें इस श्लोक में भी बोलते हैं कि उनके भक्त इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। उनका स्वभाव कैसा है? सच्चिद आनंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो सच्चिद और आनंद से बना हुआ है, तो जो भक्त उनको समझेंगे तो उन जैसा रूप प्राप्त कर पाएंगे, दिव्य रूप। तो इसीलिए लोगों को ये नहीं समझ में आता है और वो निष्क्रिय रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी तरह पूरा 24 घंटा से अधिक हम मेहनत करते हैं सिर्फ अपने जीवित रहने के लिए, भगवान ऑलवेज इंजॉय करते हैं, वृंदावन की लीलाओं में देखते हैं कि कुछ ना कुछ पास टाइम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व को पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है, वो हर जगह उपस्थित हैं ना, कि बोलते हैं कि वो सब जगह उपस्थित हैं, तभी उनका रूप है और नॉर्मल रूप नहीं है, बहुत ही दिव्य सुंदर रूप है जो कि सभी को अट्रैक्ट करता है, ऐसा रूप है और तब भी वो हर जगह उपस्थित हैं। तो ये सब चीजें लोग नहीं समझ सकते कि उनका रूप भी है और वो सब जगह कैसे उपस्थित हो सकते हैं, वो अजन्मा है तब भी वो हैं यहाँ पे, जन्म नहीं हुआ तब भी यहाँ पे प्रकट हैं, लीला करते हैं, और ये सब चीजें उनको चकराने वाली हैं, इसलिए ये सब कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, जब भगवान का पर विश्वास होगा और उनके भक्तों के माध्यम से, बोलते हैं कि कोई अगर समझने की कोशिश करता है वो जितना समझेगा भगवान को उतना ही वो नहीं समझेगा, ऐसा है, और वो जितना समझेगा उतना ही और अधिक चकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, कुछ पैरामीटर देखते हैं, अगर मान लो कुछ क्वालिटी है 100% है, तो अब कोई समझ लेता है 2%, उसको लगता है मैंने समझ लिया। अब 2% से जब तक वो 12% समझेगा, तो तब तक भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो 1000 हो गई ना, 1000% हो गई। तो अब 12% 1000 के उसमें कुछ भी नहीं है, तो मतलब जितना समझा उतना और नहीं समझा। और जब वो ये जान लेता है, 12% ही जान लेता है, तो समझ जाता है कि भगवान कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं ना। अभी बहुत सारे लोग सिर्फ बोल देते हैं कि नहीं, हम तो सब जानते हैं भगवान को, हमें भगवद गीता की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जो अभक्त हैं वो भगवद गीता नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तब भी प्रभुपाद जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जब भक्त भगवद गीता को उनको देते हैं और उनके सानिध्य में वो पढ़ते हैं, तो वो समझ सकते हैं। कैसे, एक स्टोरी आता है कि एक छोटा बालक रहता है, तो वो देखता है कि उसके दादाजी रोज भगवद गीता पढ़ते हैं, रोज प्रतिदिन वो देखता है दादाजी पढ़ते हैं। तो एक दिन वो भी देखता है, पलटाता है, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है वो संस्कृत लोग। तो वो दादाजी से पूछता है कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या करते रहते हैं? तो दादाजी क्या करते हैं, उसको एक गंदा टोकरी देते हैं कि तालाब से पानी भर के लाओ। वो भर के लाता है, लेकिन वो उसमें छेद रहता तो निकल जाता है। फिर दादाजी दोबारा भेजते हैं, तो दोबारा भी वो पानी गिर जाता है। तो वो परेशान हो जाता है कि इसमें तो पानी आएगा नहीं, टूटा हुआ है। तब फिर वो दादाजी बोलते हैं कि इस टोकरी को देखो। तो देखता है, तो पूछते हैं क्या अंतर है। तब वो बताता है कि क्लीन हो गया है। तो उसी तरह जब अभक्त लोग, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो भगवद गीता को सिर्फ पढ़ेंगे, देखेंगे भक्तों के साथ में, तो उनका जब हृदय शुद्ध होगा, जो गंदा है वो साफ होगा, तो उस भगवद गीता को समझ पाएंगे। तो ये भक्तों के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शीला प्रभात की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमल।